ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ तथा कथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को अब आतंकवादी गतिविधि का प्रमाण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।
6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में, उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी, ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है, आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से आगे विस्तार करेगा, ये राष्ट्रीय प्रगति के लिए आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य पहल नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतीय की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपनी दैनिक खपत का आकलन कर विदेशी उत्पादों की पहचान करें और उन्हें स्वदेशी विकल्पों के साथ बदलें। पिछली गलत नीतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐतिहासिक फैसलों का अध्ययन करने का आग्रह किया। 1960 की सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई या गाद नहीं निकालने पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा कि तलछट हटाने के लिए बनाए गए निचले गेटों को बंद रखने का आदेश दिया गया और दशकों तक ऐसा ही जारी रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरा होने पर विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में वहां के नेतृत्व, सांसदों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री, राज्यों सांसदों के समूह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रमुखों के साथ बातचीत की। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने लजुब्लजाना में स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक्स के साथ मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामान्य स्थिति के प्रति भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने IMF, अमेरिका और खाड़ी देशों से प्राप्त सहायता राशि का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है। फ्रांस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता वाले समूह ने पेरिस में फ्रांसीसी मीडिया से कहा कि पाकिस्तान को खुद का अच्छा लेखा जोखा देना होगा और आतंकवाद को रोकना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 69 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 3 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और कुमुदनी रजनीकांत लखिया को सार्वजनिक मामलों और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस साल आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। CBDT ने एक बयान में कहा कि इस विस्तार से ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन के कारण लोगों को अधिक समय मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल मुंबई की एक दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। श्री धनखड़ मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के 65वें और 66वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।